प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 30 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं राजबंस सिंह, आप फरीदकोट पंजाब से हैं, और रजनीश मिश्रा, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो राजबंस और रजनीश, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं थोड़ी सी दो सूचनाएं कह लीजिए या इन्फॉर्म जो भी आप चाहें कह लीजिए, मैं वो बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्म किया है, जो डीडी न्यूज के मैंने आपको टाइमिंग्स बताए थे कि अगर आप सीधे टीवी चैनल्स पर जाकर के अपने इसे देखना चाहते हैं तो टीवी पर आप इसे रात के 8 बजे से 9 बजे तक हिंदी में देख सकते हैं और 9 बजे से 10 बजे तक आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ये मैंने बताया था। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे सूचित किया है कि आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहां भी अवेलेबल होता है। अगर आप डीडी न्यूज लाइव करके जाएंगे तो आपको ये डीडी न्यूज मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप उस टाइम को मिस कर जाते हैं तो बाद में भी आप दूरदर्शन के न्यूज देख सकते हैं। मित्रों मुझे कुछ ऐसे मेल भी मिले हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने मुझसे माफी मांगी है, चाही है कि वो डीडी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं। मित्रों मेरे माफी देने न देने का कोई इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है। देखिए मेरी तो एक छोटी सी सलाह है जो मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि इसके बिना आप सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, नॉट एट ऑल। दूसरे बहुत से विकल्प हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे एक अच्छा एक साधन कह लीजिए, एक माध्यम लगता है, उस रूप में मैं सजेस्ट करता हूं। फिर बात आपकी इसमें यह है कि यदि आपको लगता है कि देखना ही चाहिए तो फिर उसमें माफी मांगने का सवाल नहीं है, क्योंकि माफी मांग देने से जो कमी रह जाएगी वो उसकी तो पूर्ति हो नहीं सकती है। तो मित्रों इसको थोड़ा सा तार्किक आधार पर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे देखना चाहिए ही तो फिर आप उसे देखिए। माफी मांगने से फिर इनकी भरपाई नहीं होती है। या आप ऐसे कर लीजिए ना, कुछ दिनों तक आप देखिए और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए उपयोगी है तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए, और लगता है कि नहीं उपयोगी नहीं है बल्कि मुझे तो वहां से इसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी या इससे तो वो अच्छा है, तो बिल्कुल आप उसको देखिए। आप ऐसा मत समझिए कि मैं कोई बहुत कोई ऑर्डिनेंस आपके लिए जारी कर रहा हूं, नॉट एट ऑल, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, कल मैंने जन औषधि केंद्र के बारे में आपसे बात की थी और उसमें फिर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आया था और फिर मैंने कहा था कि वो फैमिली जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके अंडर में है। यहां मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। राइट फ्रेंड्स, अब आइए मैं आज के मुख्य विषय के बारे में आपको बता दूं। फ्रेंड्स अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है, मैं अभी चल करके उस पर बात करूंगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण में आप देख रहे हैं कि ढेर सारे आंकड़े हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो इनका आप उपयोग कैसे करेंगे इस पर मैं कुछ बातें आपसे आज के मुख्य विषय के अंतर्गत करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी हम दूसरी खबरों को देख लेते हैं। कल राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी आया संसद के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष, उसके बारे में मैंने कुछ बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, और अगर आपने डीडी न्यूज सुना हो या रेडियो न्यूज सुना हो तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जी किस तरह से मेरी सरकार इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो बट नेचुरल है कि वो सरकार का एक विजन, जो उनके सरकार का जो अभी तक का अचीवमेंट रहे हैं और जो आगे के जो विजन है, जो उनका दृष्टिकोण है, जो चाहते हैं करना, उसके बारे में पूरा एक लेखा जोखा हमारे राष्ट्र के सामने संसद के माध्यम से राष्ट्रपति जी प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति जी ने इतना लंबा अभिभाषण दिया, वो काफी लंबा होता है क्योंकि उसमें ज्यादा सभी सेक्टर्स लगभग लगभग कवर करने की कोशिश की जाती है। और देखिए, सरकार तो इतना बड़ा काम कर रही होती, सभी क्षेत्रों में उसकी दखल होती है, तो बड़ा लंबा भी हो जाता है। अब सवाल यह है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इसमें से किसे महत्वपूर्ण समझे और किसे महत्वपूर्ण न समझे, ये उसके सामने बहुत बड़ा संकट होता है। और यही संकट आर्थिक सर्वेक्षण में भी आएगा, जिसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन जो थोड़े से भी मैच्योर हो गए हैं तैयारी करते करते, या जो इसके बारे में जानते हैं, वो आपको एक तरह से गाइड कर सकते हैं। मैं एक तरह से गाइड की शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, गारंटी कुछ भी नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर अनुभव के आधार पर कोई बात कही जा रही है तो वो बिल्कुल ही बेकार होगी। उसकी संभावना होती है, लेकिन श्योरिटी डेफिनेटली नहीं होती। तो मित्रों, मैं दो तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि पूरे देश में अगर एक साथ चुनाव कराए जाएं तो बेहतर होगा, और उस पर सभी पार्टियां विचार करें और सर्वसम्मति स्थापित करें। एक साथ पार्टी यानी कि एक साथ चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की बात। आप देख रहे हैं कि इस पर लगभग एक डेढ़ साल से लंबी बहस चल रही है। अब तो थोड़ी सी ठंडी पड़ गई, बीच में ये बहस काफी लंबी चली थी, अखबार खूब लिख रहे थे, इस पर वक्तव्य खूब आ रहे थे, अलग अलग पार्टियां अपना स्टैंड दे रही थी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधे सीधे मेंस में पूछ भी लिया गया। 2017 का जो मेंस के जो पेपर है जनरल स्टडीज के, आप देखिए उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया है। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि इस इश्यू पर एक प्रश्न 2017 में आ चुका है, तो 2018 में अब हमारे लिए यह इश्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। हां, यदि कुछ विशेष डेवलपमेंट हो जाए इस विषय पर तो फिर बात अलग है। दूसरा उन्होंने जो कहा वो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि इसमें समाज शास्त्र भी है और इसमें राजनीति भी है और इसमें अर्थशास्त्र भी है, और वह है मित्रों कि तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण की, मतलब मेरी सरकार की अब ये जो नीति है वो तुष्टिकरण की नहीं है बल्कि सशक्तिकरण की है। कि उनको ये नहीं कि अस्थायी तौर पर कुछ दे करके या वो जो चाह रहे हैं उनकी इच्छा को पूरी करके उस समय उनको संतुष्ट कर दिया जाए और उससे उनका होना जाना कुछ नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा है कि उन्हें एम्पावर्ड किया जाए, उन्हें वास्तव में शक्तिशाली बनाया जाए, यानी यूं कह लीजिए कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। ये मेरी सरकार की नीति है और हम ऐसा चाहते हैं, इस तरह की बात राष्ट्रपति जी ने कही। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, निबंध का भी हो सकता है और कोई ताज्जुब नहीं कि ये आपके जनरल स्टडीज का भी हो सकता है कि कैसे आप सशक्तिकरण करेंगे, या आप क्या समझते हैं कि अभी तक की जो सरकारें हैं उनकी अधिकांश नीतियां अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टिकरण की नीतियां रही हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से कुछ भी प्रश्न किसी भी तरह का बनाया जा सकता है। तो फिलहाल मैं केवल आपको यह बताना चाहूंगा कि इस पर आप लोग थोड़ा सा विचार करें, सोचें, और अच्छा होगा कि 2-4-500 शब्द इस पर लिख करके देखें कि तुष्टिकरण क्या होता है, किस तरह से अभी तक तुष्टिकरण किया जाता रहा है, और अब जब सरकार सशक्तिकरण कर रही है तो उसके कहने का अर्थ क्या है, और सरकार ने सशक्तिकरण के लिए अभी तक कौन से उपाय कौन से कदम उठाए हैं और आगे क्या करने जा रही है। इस पर अगर आप कुछ पॉइंट्स लेकर के लिखेंगे तो 400-500 शब्द लिखना मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर करना चाहिए, एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। मित्रों, एक दूसरी जो बात है मुझे पेपर में जो पढ़ने को मिला है, एक शब्द है प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून, ये प्रोजेक्ट लून क्या है इसे थोड़ा सा देख लीजिए। बेसिकली ये गूगल ने अनाउंस किया था प्रोजेक्ट लून के बारे में, और ये एक परियोजना है, और परियोजना ये है कि हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के हैं, दुनिया के जो दूर दराज के जो इलाके हैं, वहां जो इंटरनेट है उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी वहां कैसे पहुंचाई जाए। तो गूगल ने बैलून के माध्यम से यानी कि गुब्बारों के माध्यम से वहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाने की बात कही थी, यानी कि वो गुब्बारे में जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो भर करके और रख करके और फिर वो ऊपर आसमान में कहीं पर लगा देंगे और फिर वहां से वो इंटरनेट कनेक्टिविटी उस क्षेत्र के लोगों को मिल जाएगी। तो अब इसमें काफी कुछ संकट आ रहा है, अब गूगल फिर से उसको रिवाइज कर रही है कि किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया जा सके। तो बस आपके लिए इतना ही सफिशियंट है कि प्रोजेक्ट लून बेसिकली दूर दराज के एरियाज को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की एक योजना है। मित्रों अब आइए मैं मुख्य विषय पर आता हूं, आर्थिक सर्वेक्षण पर। और आर्थिक सर्वेक्षण में जो इतने सारे जो बातें कही गई हैं, अखबारों में भी ढेर सारी बातें आई हैं, एडिटोरियल कमेंट भी लिखे गए हैं, उनमें से सही तथ्यों का आप चुनाव कैसे करेंगे। जो मैं सही तथ्यों का चुनाव की बात कर रहा हूं मित्रों, तो मेरा संबंध सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी से है, राइट। अब आप देखिए कि एक बात न्यूज में हाईलाइट की गई, आज अखबारों में भी वो हाईलाइट की गई है, और वो ये कि सरकार ने तीन लक्ष्य अपने सामने रखे, तीन सबसे बड़े लक्ष्य अपने सामने रखे हैं। सबसे बड़े लक्ष्य, इस पर ध्यान दीजिए, वो तीन क्या है? शिक्षा, कि हम एजुकेशन पर काम करेंगे। दूसरा, रोजगार, इस पर काम किया जाएगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। और तीसरा, कृषि। ये तीन क्षेत्र उन्होंने चुने हैं, अपने प्रायोरिटी के क्षेत्र हैं जिस पर सरकार काम करेगी। इसका साफ मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो तीन टॉपिक हैं, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं। अब आप इनकी तैयारी कैसे करेंगे? इनकी तैयारी करने का तरीका यह हो सकता है कि आप इन तीनों सेक्टर्स के बारे में, इनकी जो पृष्ठभूमि रही है, जो पिछला इतिहास रहा है, थोड़ा थोड़ा, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी पृष्ठभूमि तो आपको जानना ही चाहिए कि हम अभी तक जहां पहुंचे हैं इन क्षेत्रों में, तो कैसे पहुंचे हैं, तभी आप ये समझ पाएंगे कि आगे क्या किया जाना चाहिए। नहीं तो पता लगा कि बिना पीछे का समझे आप आगे के बारे में जो बता रहे हैं, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुछ उपाय सुझाइए, तो आप वो उपाय सुझा रहे हैं जो ऑलरेडी या तो किए जा रहे हैं या करने के बाद छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि वो उतने उपयोगी नहीं रहेंगे, तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पहले आप थोड़ा सा इनके पीछे की पृष्ठभूमि को देख लें और इसके बाद फिर आगे के लिए सतर्क हो जाएं कि सरकार इस क्षेत्र में जब कोई भी योजना लेकर के आती है, कोई भी स्टेटमेंट देती है, कोई भी सर्वे रिपोर्ट आती है, तो आप उन्हें नोट करते जाएं। यानी कि ये जो तीन टॉपिक हैं, अब ये सब टॉपिक ऐसे हो गए हैं जिन पर आपको कम से कम साल भर तक तो सतर्क रहने की जरूरत है, और बहुत ही कॉमन टॉपिक भी है, पहली बात। जो दूसरी बात है मित्रों, कि उसी के तहत देखिए जो बात कही गई है, एक बात कही गई है कि जो इंडिया है वो नॉलेज कंज्यूमर नहीं, मतलब वो ज्ञान का उपभोक्ता नहीं, बल्कि ज्ञान का उत्पादक बने। नॉलेज कंज्यूमर नहीं, नॉलेज प्रोड्यूसर बने, ये कहा गया। अब ये जो नॉलेज कंज्यूमर और नॉलेज प्रोड्यूसर को अब आप थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अभी क्या कर रहे हैं? हमारे पास अपनी ज्यादातर टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब चलिए अंतरिक्ष विज्ञान में तो भारत ने बहुत कमाल किया है, लेकिन ज्यादातर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो विदेशों से हमने ले रखी है। दवाइयों के क्षेत्र में, मेडिसिन के फील्ड, मतलब दूसरी दूसरी फील्ड में आप देखिए, तो होता क्या है कि जब हम दूसरे के नॉलेज का यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो हमें फ्री में मिलता है, उसकी हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है, है ना, जिसे बौद्धिक संपदा कानून के तहत आप पढ़ेंगे। तो हम एक बहुत बड़ी राशि रॉयल्टी के तौर पर उनको देते हैं। आज अमेरिका की जो सबसे बड़ी समृद्धि की जो ताकत है वो नॉलेज ही है, वो रॉयल्टी है। छोटे छोटे देश आप देखेंगे कि इसके दम पर कहां से कहां पहुंच गए, केवल नॉलेज के दम पर। इसराइल छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, खासकर जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है, पानी की बचत की जो टेक्नोलॉजी है, जो हथियार बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी की जो टेक्नोलॉजी है, वो अद्भुत है। तो जो भी उसकी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा वो उसे रॉयल्टी के रूप में देगा। हम अभी तक लगभग यही करते रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, भारत को प्रोड्यूसर बनना है, नॉलेज का प्रोड्यूसर, जिसे हम दूसरी भाषा में मित्रों नवोन्मेषता कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं, कि भारत को इनोवेट करना है, नई नई चीजें आविष्कृत करनी है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसमें जो चैलेंज की जो बात आई है मित्रों, की इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में वृद्धि होना शुरू हो गया, तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई है। अब आपने देखा कि ये कहा गया कि ये हमारे आने वाली दिनों के लिए एक चुनौती हो सकती है। अब आपको यहां सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा गया, ये चुनौती क्यों हो सकती, कैसे हो सकती है। इसका उत्तर देखिए बहुत सरल है, हमारे पास अपना तेल प्रोडक्शन उतना नहीं है, ऑयल प्रोडक्शन, तेल की जब हम बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थों की बात हो रही है। हमको अपनी जरूरत का लगभग आप समझ लीजिए कि 2/3 या 1/4 मतलब 3/4 तक इसका जो जरूरत का जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो विदेशों से आयात करना पड़ता है। और जब विदेशों से आयात करना पड़ता है तो उसके लिए हमको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। तो जब वो महंगा हो जाएगा, मान लीजिए कि चलिए क्वांटिटी तो हम उतनी ही मंगाएंगे जितनी मंगाते रहे हैं, लेकिन अगर उनकी कीमतें बढ़ गई तो बट नेचुरल है कि अब हमें उतने ही तेल के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, और जब ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा तो हमारी विदेशी मुद्रा उधर जाएगी, तो भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो कम होने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये हमारी चुनौती होगी। तो मित्रों, ये एक पॉइंट है। अब आंकड़ों की दुनिया में मैं आता हूं। देखिए, जो आंकड़ों का बहुत बड़ा जाल आर्थिक सर्वेक्षण में होता है, आपको देखना यह होगा कि जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उनके आंकड़े क्या कहते हैं। जैसे कृषि को ले लीजिए, तो देखिए कृषि की जो ग्रोथ कितनी दिखा रखी है, 2.1 समथिंग, राइट। मजेदार बात है कि इंडस्ट्री ग्रोथ आप देखिए, इसके डबल है, ऑलमोस्ट डबल है, एग्जैक्ट डबल नहीं। और उससे मजेदार बात यह है कि आप सर्विस सेक्टर की देखिए तो वो इंडस्ट्री के डबल है, एग्रीकल्चर के 4 times और इंडस्ट्री के डबल, यानी कि 8% के आसपास है। एग्रीकल्चर 2%, इंडस्ट्री 4% और सर्विस सेक्टर 8%। तो ये आंकड़े आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर हमारा बहुत स्लो है, इंडस्ट्री उससे दुगने रफ्तार से है, और सर्विस सेक्टर में हम खूब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। फिर एक बहुत अच्छा जो डेटा मिला है, जो आपको लंबे समय तक आपकी मदद करता रहेगा, वो ये है कि भारत की जो बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग हैं, 1% कंपनियां हैं, तो जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो केवल 38% एक्सपोर्ट कर रही है। जो 62% जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो मध्यम, लघु और या जो दूसरी कंपनियां हैं उनके जरिए हो रहा है। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग होते हैं वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट हमारे यहां की सबसे बड़ी समस्या है। जबकि दूसरे देश, जैसे कि अगर आप जर्मनी को ले लें, तो वो 1% जो कंपनी है वो 68% एक्सपोर्ट कर रही है, और ब्राजील जो एक तरह से डेवलपिंग कंट्री है हमारी तरह, वहां 72% वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो बड़ी कंपनियां हैं 1% एक्सपोर्ट के मामले में उनका कम रोल है, वो उतना नियंत्रण नहीं रख रही हैं। तो इससे एक चीज और भी सिद्ध होती है कि जो अभी भी जो भारत का एक्सपोर्ट है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो लघु एवं मध्यम उद्योगों का है, और सरकार को चाहिए कि वह उसे और आगे बढ़ाए। मतलब ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के हमारे लघु और मध्यम उद्योगों को नष्ट कर सकती हैं। एक आंकड़ा हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए आपको मिला कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन है मित्रों, फूड प्रोडक्शन हमारा 2.75 करोड़ टन हो गया है, 2.5 करोड़ टन हो गया है खाद्यान्न उत्पादन। तो ये आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं समय समय पर, ताकि आप इनका इस्तेमाल कर सके। तो मित्रों, जो भी थोड़ा सा वक्त था उसके आधार पर मैंने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के आपसे कुछ बातें करने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा आंकड़ों के जंगल में आपको भटकने की जरूरत नहीं है, जो बहुत ही मूलभूत और बड़े इंपॉर्टेंट जो आंकड़े हैं, बस केवल उनको आप नोट कर लें और बीच बीच में उनको दोहराते रहें, आपको अपनी बात कहने के लिए ठोस आधार मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर, और हमेशा की तरह वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपने अपने ढंग से देख लेंगे। मेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उनमें से 3 दोस्तों के नाम हैं, डॉक्टर एम ए खान, कमलेश वर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ से और नरेश गोदरा। आप तीनों दोस्तों का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।